मालूमात है कुछ खास, मालूमात है कुछ खास, अंबिया के वाकयात, एक नई होगी किताब, जिंदगी कैसे बसर करनी है सीखेंगे आज।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آپ دیکھیں مدنی چینل پروگرام ہے معلومات ہیں کچھ خاص वी हैव फोर सेगमेंट्स हमारे इस सिलसिले में प्रोग्राम में चार सेगमेंट्स होंगे। नंबर वन सेगमेंट है अंबिया के वाकयात और आज हम तज़किरा करेंगे हज़रत इब्राहीम अला नबीशना व अलैहि सलातुस्सलाम। नाउ लेट्स लिसन सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंटायर मैनकाइंड। आप अलैहि सलाम का नाम इब्राहीम है। इब्राहिम सरियानी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है मेहरबान बाप। चूंकि आप बच्चों पर बहुत मेहरबान थे, नीज मेहमान नवाजी और रहमो करम में भी बड़े मशहूर थे, इसीलिए आपको इब्राहिम कहा जाता है। बाज लोगों ने कहा कि इब्राहिम असल में अब्रम है जिसके माना है बुजुर्ग। चूंकि आप बहुत से अंबिया कराम के वालिद हैं और सारे दिनों में आपकी इज्जत, हत्ता के मुशरिकीन मक्का भी आपकी अजमत करते थे, इसलिए आपका नाम इब्राहिम हुआ। आपकी कुनियत बहुत मेहमान नवाज है क्योंकि आपका घर सड़क के किनारे था, जो वहां से गुजरता आप उसकी मेहमान नवाजी फरमाते। आपकी विलादत सरजमीन अहवाज के मकाम सोस में हुई, फिर आपके वालिद आपको बाबिल मुल्क के नमरूद में ले आए। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत और दनाई से सरफराज फरमाया और आपको ज़मीन व आसमान की तमाम अशिया का मुशाहिदा भी करवाया। चुनाचे इरशाद रब्बानी है और इसी तरह हम इब्राहिम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और ज़मीन की, इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। आप अली सलातो सलाम को जो ख़ास फजीलतें अता फरमाई गई वो ये हैं। नंबर वन, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही अपने बाद आने वाले सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। हर आसमानी दीन में आप ही की पैरवी और इताअत है, हर दीन वाले आपकी ताजीम करते हैं, आप ही की यादगार हज के अरकान हैं, आप ही काबा शरीफ की पहली तामीर करने वाले यानी उसे घर की शक्ल में बनाने वाले हैं। जिस पत्थर यानी मकाम इब्राहिम पे खड़े होकर आपने काबा शरीफ बनाया, वहां कयाम और सजदे होते हैं। मुसलमानों के फौत हो जाने वाले बच्चों को आप और आपकी बीवी साहिबा हजरत सारा रदी अल्लाह अन्हा आलम बरजख में उनकी परवरिश करते हैं। और ये कुर्बानियां हदीस पाक समात फरमाइए, सैयदना जैद बिन अरकम फरमाते हैं, साहबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा इकराम अली मुरिद्वान ने अर्ज की, इनमें हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी है। अर्ज की, और ऊन में? इसके हर बाल के बदले में भी एक नेकी है। आपने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर सब्र रजा का ऐसा मंजर पेश फरमाया कि जिसकी नजीर यानी मिसाल नहीं मिलती। आपने जिलहज की आठवीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला यह कह रहा है, बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को जबह करने का हुक्म देता है। नवी रात फिर वही ख्वाब देखा, दसवीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आपने इस ख्वाब पर अमल करने यानी अपने बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र 7 साल या 13 साल یا اس سے کچھ زائد تھی لے کر چلے۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، چنانچہ پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 104-107 میں ارشاد ہوا، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اس واقعے سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اعلیٰ مقام صبر و رضا ثابت ہوتا ہے، وہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اعلیٰ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب کا حد درجہ مطیع و فرما بردار ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں کفر و شرک کی اندھیری وادیوں سے نکالنے کے لیے کمر بستہ رہے، مگر وہ باز نہ آئے اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ نمرود اور اس کی قوم آپ کو زندہ جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی، ایک عظیم بڑی آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے بھی جل گئے۔ آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس آگ میں پھینکا گیا، اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کیا کچھ کام ہے، آپ نے فرمایا تم سے نہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجئے، فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، ترجمہ کنز الایمان، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، تو آگ نے سوائے آپ کی رسیوں کے کچھ اور نہ جلایا، آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ یاد رکھیے دین کی تبلیغ کرنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس راہ میں ملنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا بھی انہی مقدس ہستیوں کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سفید بالوں میں مہندی لگائی اور نیل کے پتوں کا خضاب لگایا، سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، سب سے پہلے آپ ہی نے منبر پہ خطبہ پڑھا، سب سے پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی، سب سے پہلے آپ ہی ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے۔ اللہ عز و جل کی ان پر مزید رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے پروگرام معلومات ہے کچھ خاص کا پہلا سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا اور اس میں تذکرہ سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آئیے بڑھتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے ہیلتھ ٹپ۔ موونگ ٹوورڈز دی سیکنڈ سیگمنٹ، نیم از ہیلتھ ٹپ۔ حدیث پاک سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کدو لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل میں اضافہ کرتا اور دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے خبر ملی کہ زمین میں کوئی بھی انار کا درخت ایسا نہیں ہے جسے بارداد یعنی پھل کے قابل کرنے کے لیے اس میں جنتی انار کا دانہ نہ ڈالا جاتا ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پھلوں اور سبزیوں کا ذکر وہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ انسانی صحت کے حوالے سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ غذا ہے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس۔ دیکھیے ڈائٹ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہائی کولیسٹرول، موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، اوور ویٹ، اپنی صحت کے بارے میں کوئی ذرا سی تحقیق کرے تو بہت سے لوگ اس لسٹ میں آ جائیں گے۔ دل کے امراض، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں پچھلے 4 سالوں میں 45% تک اضافہ ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ غذا کی بے احتیاطی۔ سو بیلنس ڈائٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ناؤ ڈیز وین وی آر فیسنگ اے فلڈ آف فاسٹ فوڈ اینڈ آر ریگولر ڈائٹ۔ ایسی غذا جس میں سارے اہم اجزاء موجود ہوں، یقیناً گوشت یہ پروٹینز کا، بی وائٹامن، زنک، پوٹیشیم کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، لیکن یہ گوشت اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں اور پھل بھی بہت ضروری ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دن میں ایک انسان کو آن دا ایوریج 850 ग्राम सब्जियां या फल खानी चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट, ये ज़रूरत मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। एक बच्चा जिसकी ग्रोथ हो रही है अभी, उसको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए। इसी तरीके से एक माँ जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, उसको एक्स्ट्रा आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, गोश्त, अंडा, दूध, मछली, फल, सब्जी। और एक शख्स जिसको वज़न उठाने का काम है, जो ज़्यादा एफर्ट करता है, जिसका पसीना निकलता है, काम ज़्यादा करता है, उसको थोड़ी मिकदार में ग्लूकोज और शुगर की ज़रूरत है, ताकि एकदम स्प्राउट आए एनर्जी का और उसके काम वो मुतासर ना हो। सब्जियाँ और फल जी अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल कीजिए। सालों पर मुहित बहुत एक तवील रिसर्च के मुताबिक ऐसे अफराद जो सब्जियां और फल रोज़ाना नहीं इस्तेमाल करते, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बरकरार नहीं रह पाती। और वैरायटी एंड प्लेंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये वैरायटी होना चाहिए और तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 50% बच्चे या तो सब्जियां फल बिल्कुल नहीं खाते या स्टैंडर्ड से कम खाते हैं। और एक और बहुत अहम चीज़ याद रखिए, वो है पानी। जो हम खाना खाते हैं ना, उसको हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए पानी बहुत अहम है। और जो खाना हमने खा लिया, पूरे जिस्म में उसको पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पानी बहुत अहम है। और भी बहुत से अहम कामों के लिए पानी की जरूरत होती है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। कुकिंग ऑयल की रोजाना की रिक्वायरमेंट 20 ग्राम, यानी 4 चाय के चम्मच है। बच्चों के अंदर ये 5 चाय के चम्मच भी हो सकती है। नमक और चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट, और सेगमेंट है किताब का तारुफ। सो द नेक्स्ट सेगमेंट किताब का तारुफ, इट्स बैक बाइटिंग। देखिए, स्टार्ट में मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं। आप जानते हैं कि किसी चीज को समझने के लिए मिसाल की, एग्जाम्पल की, इलस्ट्रेशन की कितनी अहमियत होती है। इट एड्स वैल्यू टू योर राइटिंग। याद रहे, मिसाल तहरीर को मजीद मजबूत कर देती है, नुमाया कर देती है। मोर इन्फॉर्मेशन, आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ इट कैन ईजीली बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरी चैनल के नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा, जब किसी चीज़ के बारे में आपको मिसाल दी जाती है ना, तो आप हकीकी ज़िंदगी में उसको फिट करना आपके लिए आसान हो जाता है। आपकी रियल लाइफ सिचुएशन में उस बात को फिट करना आसान हो जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट मेक्स द कम्युनिकेशन मोर ईजी, राबता करना, अपनी बात को समझाना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ये किताब देखिए, किताब है गीबत की तबाहकारियाँ। इस किताब में गीबत की 1800 से ज़्यादा मिसालें शामिल हैं। दे लिखा हुआ है इस किताब में गीबत वगैरह की 1800 से ज़्यादा मिसालें शामिल हैं। यानी बताया गया कि गीबत क्या है, तुम अपने भाई का इस तरह जिक्र करो जिसे वो ना पसंद करता है। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए जनरल एग्जांपल्स काउट की गई। दुनियादार, कर्जा दबा लिया, उसकी अकल घास चरने गई है, अपने नंबर जमाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए, अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब दामत बरकातहुम अलालिया एक हमा जहद शख्सियत हैं। एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हिज डायनामिक पर्सनैलिटी इज दैट ही इज़ ए राइटर। आप एक मुसन्निफ हैं, और ख़ास पहचान आपकी लिखाई की वो आपकी सिंप्लिसिटी है। आसान, अ फिट फॉर ऑल प्रोडक्ट, फिट फॉर ऑल प्रोडक्ट, यानी आपकी लिखी हुई तहरीर माशरे का हर हर जो तबके का फर्द है वो बड़े मज़े से पढ़ता है, आसानी से पढ़ता है, उसको समझ आ जाती है जो कहना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, सहल अंदाज होता है। तो आपकी बुक्स के उनवानात और टाइटल भी इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसान बिल्कुल उसमें कैप्चर हो जाता है, और वो किताब को खोलता है, और जब खोल लेता है तो अल्लाह के करम से फिर पढ़ता ही चला जाता है। और फिर सबसे बढ़कर आपने ऐसे बहुत से मौजूआत पर कलम उठाया जो इंतहाई ज़रूरी और यूनिक हैं। आप इसी किताब को ले लीजिए, गीबत की तबाहकारियाँ, बैक बाइटिंग, अ कैंसर इन आवर सोसाइटी। इस मौजू पर ऐसा ज़बरदस्त टेक्स्ट आपको शायद ढूंढने से भी ना मिले, और अंदाज़ इतना एब्जॉर्बिंग कि एक चैप्टर दूसरे के अंदर मिलता चला जाता है, और टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, यानी मौजूआत में एक रब्त है। और सबसे बढ़कर मुआशरे के हर तबके का इंसान गीबत में कैसे मुब्तला हो सकता है, अमीर अहले सुन्नत ने बड़ा ही क्लियरली और पैलुसिडली उसको एक्सप्लेन किया, मिसाल के साथ बताया. सो रीडर व्हेन ऑब्जर्व दैट ही हिमसेल्फ इज द एड्रेसी, इंटरेस्ट इज ऑन द पिनेकल. तो जो पढ़ने वाला ताजर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी और प्रोफेशन से वाबस्ता है, घरदार है, या वैसे ही कोई जॉब करता है, जब वो देखता है कि मुझे मुखातिब किया जा रहा है तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है. अब देखिए, मौजू इतना इम्पॉर्टेंट है कि गीबत के बारे में इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, इट्स कंपल्सरी. अमीर अहले सुन्नत स्टार्ट में ये हेडिंग है, गीबत के ज़रूरी अहकाम सीखना फ़र्ज़ है. हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर उसकी मौजूदा हालत के मुताबिक मसले सीखना फ़र्ज़ ऐन है. अब देखिए, कोई भी इंसान हो, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेशनल है, उस्ताद है, शागिर्द है, अपने तमाम सब्जेक्ट्स तो वो पढ़ रहा है. अगर वो डॉक्टर है, वो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और ऑर्थोपेडिक्स वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ रहा है. इसी तरह के इंजीनियर है, वो अपने लॉज वगैरह जो उसकी बुक्स में हैं और जो कवानीन वो पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन इल्म हासिल करना इस बारे में उसके लिए कंपल्सरी हो गया. और गीबत के टॉपिक को इस किताब में जिस तरह कवर किया गया, कमाल है, एक्सलेंट. गीबत क्या है, बचने का तरीका क्या है, अमीर अहले सुन्नत ने अपने जाती तजर्बात प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए. अब पेज नंबर 452 अगर हम निकालें, इसके ऊपर आप लिखते हैं, ऐ आशिकान रसूल, गीबत से बचने की तदबीर करते रहिए, इंशाअल्लाह करम होगा और इससे बचना भी आसान हो जाएगा. किसी जिम्मेदार इस्लामी भाई का बयान है कि एक दिन मेरे पास जुदा जुदा वक्त में दो इस्लामी भाई कुछ इस अंदाज से आए कि मैं समझ गया कि अब गीबत की नहुसत में फंसे ही फंसे. मैंने अपने सीने पर सजा हुआ वो कार्ड दोनों को पढ़ा दिया जिसमें जली हरूफ में लिखा था, गीबत करूंगा ना सुनूंगा इंशाअल्लाह. इसकी बरकत ये जाहिर हुई कि एक तो चुप साध गया जबकि दूसरे ने खूब संभल कर गुफ्तगू की, और वो भी फकत दो मिनट. कार्ड आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब किया जा सकता है. एक्सेलेंट एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से. और यही मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब एक इंसान अमली जिंदगी की मिसाल सुनता है तो बहुत अट्रैक्ट होता है. तो गीबत हो जाए तो तौबा का तरीका भी इसमें बताया गया है. जी जरा देखिए कितना माइनर और माइन्यूट और माइक्रो लेवल पर बात की गई है कि फोन आने की सूरत में कैसे गीबत हो सकती है, किसी को फोन करता देखकर गीबत कैसे हो सकती है, एसएमएस के हवाले से, चैटिंग के हवाले से, इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से कैसे गीबत हो सकती है. यानी इतना मतलब जबरदस्त अंदाज इसमें रखा गया, पूरे उस टॉपिक के हर हर डायमेंशन, हर हर स्फीयर को कवर किया अमीर अहले सुन्नत ने. आप इस किताब को दावत इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट dawatislami.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मकतबतुल मदीना से खरीद कर अपने पास रखिए, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ दीगर अहबाब को, दोस्तों को तोहफे में दीजिए और लाइब्रेरीज में रखने की कोशिश कीजिए. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम, एंड द सेगमेंट इज सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल ये है हमारे सेगमेंट का नाम, और प्रोग्राम इज गोइंग टू एंड नाउ. बड़ी प्यारी आदत मुबारक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, फरमाया जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम. सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना तुम्हारे लिए सदका है, और नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना सदका है. हर दिल अजीज बनने का नुस्खा, इट जस्ट लाइक चार्जिंग योर बॉडी एंड टू रिफ्रेश योर मूड. परेशानियों और टेंशन को आपकी मुस्कुराहट किल कर देती है. ये दिमाग की बेहतरीन एक्सरसाइज भी है. आपकी आंखें चमक उठती हैं, चेहरा जगमग करने लगता है. तो ये स्माइल, मुस्कुराना, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है. याद रखिए, आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी दुखी दिल में खुशी दाखिल कर सकती है. यूँ समझिए कि जब आप मुस्कुराते हैं, योर ब्यूटिफुल डे इज एक्टिवेटेड, आपका अगला सारा दिन वो इंशाअल्लाह अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा. इसीलिए कहा जाता है कि कामयाब लोगों के होठों पर दो चीज़ें होती हैं, एक खामोशी और दूसरी मुस्कुराहट. मुस्कुराना दिमाग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इट ट्रांसफॉर्म्स योर ब्रेन, ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग की तरफ बढ़ जाती है, और दिमाग में इंसान के जो न्यूरॉन्स होती हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं. चेहरे में 43 मसल्स होते हैं और जब इंसान मुस्कुराता है इनकी एक्सरसाइज हो रही होती है। और बहुत सी ह्यूमन रिसोर्स की स्टडीज़ ये बताती हैं कि कोई बंदा आपसे मिले तो सबसे पहली चीज़ जो आप में नोट करता है और जिससे मुतासर होता है वो आपकी प्यारी मुस्कुराहट है। और ये एक सिग्नल भी होता है सामने वाले को कि आप पॉजिटिव माइंडेड आदमी हैं और आप मुस्बत सोचते हैं, दोस्ताना तबीयत रखते हैं और ओपन टू ऑल हैं। एंड स्माइलिंग और लाफ्टर इज कंटेजियस। आपने नोट किया होगा कि जब आप बैठे हो बिलखसूस फैमिली के साथ, कोई एक बंदा खुश हो जाए, मुस्कुरा उठे, तो सभी खुश हो जाते हैं और सभी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये मुस्कुराना ये कंटेजियस होता है, बल्कि ये एक इतना ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल फेनोमेना है कि अगर आपके सामने कोई मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और आप उससे मुतासर नहीं हो रहे और उससे नहीं मुस्कुरा रहे आप आगे से, तो इसको एंटी सोशल बिहेवियर भी कहा गया है। जिस तरह कोई छींक मारे या कोई जमाई ले या कोई खंकारे खांसे तो सबको खांसी याद आ जाती है, इसी तरीके से यह भी एक्टिवेट होता है। इट शुड बी नेचुरल एंड सिंसियर। यहां पर यह बात याद रखी जाए कि मुस्कुराना यह नेचुरल होना चाहिए, अंदर से हो, खालिस हो। बहरहाल साइंस तो यहां तक बताती है कि अगर आप बनावटी तौर पे भी कोई मुस्कुराता है उसका दिमाग जो है वो भी रिफ्रेश हो जाता है और बनावटी तौर पे मुस्कुराना भी उसको मूड को अच्छा कर देता है। अपने दांतों को साफ कीजिए, मिसवाक कीजिए, सिगरेट ना पीजिए, खूब पानी पिए, छोटी छोटी बातों पे खुश होना सीखिए, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मुस्कुराहट में इजाफा होगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाही ताला फरमाते हैं मुस्कुराना अच्छी चीज़ है, काकाहा बुरी चीज़ है। तबस्सुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, लिहाजा जब भी किसी से मिलो मुस्कुरा कर मिलो। प्यारे प्यारे साईं भी मदरी चल के नाजरीन, याद रहे कहकहा लगाना अगरचा शैतान की तरफ से है, बुरा भी है, सुन्नत भी नहीं है, लेकिन गुना नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको दुनिया और आखिरत की बेशुमार खुशियां अता फरमाए। आप देख रहे हैं मदनी चैनल, इंशाअल्लाह इल्म दीन का खजाना हाथ आएगा, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ देखेंगे तो सवाब भी मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मालूमात हैं कुछ खास, मालूमात हैं कुछ खास, अंबिया के वाकयात, एक नई होगी किताब, जिंदगी कैसे बसर करनी है सीखेंगे आज।